Yeah. भाई बहनों प्रतिमा के साथ हो गया है एक बार फिर से जानकार नामक प्रोग्राम में। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और किमछो। शुक्रवार का दिन है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सही सलामत होंगे और नवरात्रि का जो पावन पर्व है उसका खूब ही आनंद ले रहे होंगे। तब आज का जो प्रोग्राम है ये खास करके विजयादशमी पर हमने आधारित किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपका मन भाएगा, आपको बहुत ज्ञान भरी बातें सुनने को मिलेगी। सबसे पहले आपको ये बताना उचित समझती हूँ कि प्लैनेट एफएम 104.6 का प्रसारण है ये। हर शुक्रवार को 3:50 से 4:50 तक हम आपके खिदमत में लाते हैं झरकार नामक प्रोग्राम और बहनों का प्रोग्राम। तो इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम को इंटरनेट द्वारा भी सुन सकते हैं और पता है www.planetaudio.org.nz/झनकार। 7 दिनों तक ये प्रोग्राम हमारे इंटरनेट पर रुका रहता है। 7 दिन के भीतर में कोई भी समय आप जाकर हमारे प्रोग्राम को सुन सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको विजयादशमी पर जानकारी अब मैं पहुंचाती हूं। तो विजयादशमी भारत में मनाए जाने वाले अनेक त्योहारों में से एक प्रमुख त्योहार है। इसे आम बोलचाल के शब्दों के दशहरा और देहाती उच्चारण में दसरा या दशहरा भी कहा जाता है, क्योंकि भारतीय उत्सव और त्योहार देशी तिथियों के हिसाब से मनाए जाते हैं। इस दृष्टि से विजयादशमी का त्योहार अश्विन या कार्तिक मास में ही अक्सर पड़ा करता है। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से सितंबर या अक्टूबर में अधिक अक्टूबर मास में ही दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रसिद्ध और सर्वज्ञात रूप से विजयादशमी का त्योहार मनाने का संबंध भगवान राम की जीवन कथा से है। पिता की आज्ञा से 14 वर्षों का वनवास भोगते राम जब पंचवटी में निवास कर रहे थे तो दुष्चरित्रा शूर्नखा के उकसावे में आकर लंकापति रावण ने सीता का अपहरण कर लिया था और सुग्रीव के साथ महावीर हनुमान की सहायता से मैत्री संबंध जोड़कर उनकी वानरी सेना और महावीर हनुमान के प्रयासों से ये पता पाकर कि सीता हरण कर रावण ने उसे अपना राजधानी लंका की अशोक वाटिका में छिपा रखा है। भगवान राम ने रावण की लंका पर आक्रमण कर दिया। लगातार 9 दिनों तक दोनों ओर के वीर सैनिकों में घनघोर युद्ध होता रहा। अंत में 10वें दिन राम ने रावण को मारकर उस पर विजय पाई और उस दिन दशमी तिथि थी। सो रावण पर राम की इस विजय की खुशी के रूप में ही विजयादशमी का त्योहार विशेषकर सारे उत्तर भारत में मनाया जाता है। 9 दिनों तक लगातार रामलीला होना, राम जीवन के संबंधित झांकियां निकाली जाते रहना और फिर 10वें दिन रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि के पुतलों का दहन भी विजयादशमी का त्योहार मनाने का प्रमुख यही कारण प्रकट करता है। विजयादशमी का त्योहार मनाने का कारण महिषासुर मर्दिनी शक्ति का अवतार और सिंहवाहिनी देवी दुर्गा की विजय गाथा के साथ भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार महिषासुर नामक दुर्दांत असुर से देव जाति को बचाने के लिए दुर्गा ने उसके साथ लगातार 9 दिनों तक घमासान युद्ध किया था। 10वें दिन यानी दशमी तिथि के दिन कहीं जाकर उसका वध किया गया। तो उस विजय को स्मरण करने के लिए 9 दिनों तक स्त्रियां तथा भक्तजन देवी का प्रतोपवास रख उसकी पूजा उपासना करती है। 10वें दिन बालिकाओं को खिला पिलाकर अपने व्रतोपवास का उपारण करती है और पहली राम कथा के समान ये कथा भी आसुरी शक्तियों पर देवी शक्तियों को विजय गाथा ही कहने वाली है। विजयदशमी का जो त्योहार है मनाने के साथ कई अन्य पराप्राकृतिक किस्म की कहानियां भी जुड़ी हुई है। संबंध सभी का साहस वीरता और विजय के साथ ही है। कहा जाता है कि किसी महान ऋषि के गुरुकुल में पढ़ रहे शिष्यों का दीक्षांत समारोह हो जाने के बाद जब एक अत्यंत निर्धन छात्र ने गुरु से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा तो गुरु ने उसकी वास्तविकता से परिचित रहने के कारण उसे टालना चाहा, पर जब वह मांगने की हट करने लगा तब गुरु ने कई लाख स्वर्ण मुद्राएं ला देने का आदेश दिया और वह छात्र घबराया नहीं और सृष्टि जनों के पास उतनी मुद्राएं लेने पहुंचा। उन्होंने उसे राजा के पास भेज दिया। राजा अभी अभी यज्ञ में अपना सारा धन दान कर चुके थे सो चिंता में पड़ गए, लेकिन द्वार पर मांगने आए जो छात्र को खाली हाथ भी लौटाना नहीं सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने धन देवता कुबेर पर आक्रमण करने का निश्चय कर अपनी विशाल सेना से उस पर घेरा डाल दिया। 9 दिनों तक निरंतर कसते आ रहे घेरे से घबराकर कहा जाता है कि कुबेर ने रात के समय शमीक के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा कर दी। 10वीं सुबह राजा ने छात्र से कहा कि वह सारी मुद्राएं उठाकर ले जाए, पर वह उतनी ही उठाकर ले गया जितनी उसने अपने गुरु को दक्षिणा में देनी थी। राजा ने श्रेष्ठ गरीबों को लुटा दी। महाराष्ट्र में आज भी विजयदशमी के दिन लोग शमीक वृक्ष के पत्तों को शुभ मानकर अपने सगे संबंधियों और परिचित मित्रों से आदान प्रदान किया करते हैं। सो ये कहानी भी विजय का उत्सव मनाने की बात ही प्रकट करती है। विजयदशमी विजय का उत्सव है। उपर्युक्त सभी उदाहरण इसी तथ्य की ओर इंगित करने वाले हैं। मुख्य रूप से इसे राम कथा के साथ ही जोड़कर मनाया जाता है। यूं इसे मनाने की तैयारियां महीनों पहले रामलीलाओं के पूर्वाभ्यास के रूप में शुरू हो जाया करती है। फिर 9 दिनों तक लगातार राम जीवन की संपूर्ण लीला छोटे बड़े प्रत्येक स्तर पर प्रस्तुत की जाती है और दिन के समय घटित या घटने वाली जो लीलाओं की भव्य झांकियां भी लगाई जाती है, बाजारों में निकाली जाती हैं और 10वें दिन किसी खुले मैदान में पटाखों से भरे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले खड़े किए जाते हैं और वहां आसपास एक मेले जैसा दृश्य ही उपस्थित हो जाया करता है और मिठाइयों की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी तरह की दुकानों तो भरती ही है, मगर खेल तमाशे वाले भी कमाई करने आ जाया करते हैं। तो लोग रंग बिरंगे नए परिधान पहन कर वहां आते हैं। तब सूर्यास्त से कुछ पहले राम लक्ष्मण की सवारी पहुंचकर अभिनयात्मक युद्ध का जो दृश्य है उपस्थित कर बकायदा रावण आदि का वध करते हैं और उसके बाद एक प्रज्वलित बाण चलाकर पुतलों को आग लगा दी जाती है और घा घा फटफट और खेल समाप्त। तो इस तरह रावण पर राम की विजय के साथ साथ विजयदशमी का जो त्योहार है संपन्न हो जाता है।
Yeah.
चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक जिस प्रकार भगवती दुर्गा की विशेष पूजा आराधना की जाती है और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार अश्विन मास के नवरात्रों में भी की जाती है भगवती की विशेष पूजा आराधना और कन्या पूजन। और बंगाली भाई आज नौ दिन के दुर्गा और काली पूजन के बाद उन मूर्तियों का बड़ी धूमधाम से नदियों में विसर्जन करते हैं तथा उनके बड़े बड़े जुलूस भी निकालते हैं। और आज के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है और इसके साथ ही प्रत्येक क्षेत्र और परिवार में दशहरा मनाने के अलग अलग कुछ अतिरिक्त विधान भी है। कुछ क्षेत्रों में गोबर का दशहरा रखकर उसकी पूजा भी की जाती है। इसी प्रकार अनेक परिवारों में आज बहनों और भाइयों के तिलक भी करती हैं। तो प्रथम नवरात्र के दिन देवी के नाम के जौ बोकर आज के दिन उनके छोटे छोटे पौधे उखाड़कर पूजने और भाइयों को देने का रिवाज भी कुछ क्षेत्रों में है। भगवान श्री राम की लंका पर विजय के उपलक्ष में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी और हनुमान जी की विशेष पूजाएं तो की ही जाती हैं। तांत्रिक यंत्र मंत्र और तंत्र की साधनाएं भी करते हैं। ज्योति निबंध में लिखा है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। वह सब कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विजयादशमी हमारा राष्ट्रीय पर्व है और मुख्य रूप से ये क्षत्रियों का त्योहार है। दशमी के दिन रामचंद्र जी की सवारी बड़ी सज धज के साथ निकलती है और रावण वध की लीला का प्रदर्शन होता है और इस दिन नीलकंठ का दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। तो इस संबंध में कथा एक इस प्रकार है कि एक बार पार्वती जी ने पूछा कि लोगों में जो दशहरे का त्योहार प्रचलित है इसका क्या फल है। शिव जी ने बताया कि अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इसी समय प्रस्थान करना चाहिए और इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी विजय काल में लंका पर चढ़ाई की थी और इसलिए ये दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। और शत्रु से युद्ध करने का प्रसंग ना होने पर भी इस काल में राजाओं को अपनी सीमा का उल्लंघन अवश्य करना चाहिए। अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर शमी वृक्ष का जो पूजन है वो करना चाहिए। पूजन करने वाला शमी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करिए कि हे शमी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया और रामचंद्र जी से विजय वाणी कही। पार्वती जी बोली कि शमी, वृक्ष अर्जुन का धनुष कब और किस कारण धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसे विजयवाणी कही थी, सो कृपा कर हमें समझाइए। तो शिव जी ने उत्तर दिया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था और कि 12 वर्ष तक प्रकट रूप से वन में जहां चाहे वहीं फिरे और किंतु एक वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। तो उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक शमी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ व्रिहंडला के वश में रहे और विराट के पुत्र कुमार ने गौओं को रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने शमी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। तो शमी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी और विजय दशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय शमी वृक्ष ने कहा था कि आपकी विजय होगी और इसलिए विजय काल में शमी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर कि श्री कृष्ण जी ने उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होना, अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा बाजे गाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए और उसे इस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिक्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी, शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में वान लगाए और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करे, ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शास्त्रादि का निरीक्षण करना चाहिए। ये सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। तो जो राजा इस विधि से विजय करता है वह सदा अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। और भाइयों बहनों, आइए अब इस बार गोपेश्वरी दीदी की आवाज में दशहरा पर एक खास संदेश।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम एवं नमस्कार। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि नवरात्रि के समय हम क्या करें, और हम नवरात्रि एवं विजयदशमी जो दशहरा होता है दसवें दिन उसको क्यों मनाते हैं। हम लोग विशेष रूप से यही देखते आए हैं अपने यहाँ न्यूजीलैंड में या फिर और भी देशों में जैसे फिजी इत्यादि में, और भारतवर्ष में भी अलग अलग प्रांत में हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि लोग नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रियों को विशेष रूप से हम लोग यही देखते हैं कि लोग मानता रखते हैं और नवरात्रियों में जा करके नवरात्रियों वो लोग गरबा करते हैं और माँ को पूजा करते हैं, माता का पूजा होता है। कई जगह पर ये देखा जाता है कि गरबा इत्यादि तो नहीं करते लेकिन माता का जागरण करते हैं और पूजा करते हैं। परंतु जब हम भारतवर्ष में अयोध्या पुरी वृंदावन धाम की ओर चलते हैं या हम लोग और भी अलग प्रांत में जाते हैं जहाँ पर विशेष रूप से वेदों शास्त्रों का रामायण इत्यादि का प्रचार है, तो हम देखते हैं कि नवरात्रि जो है वो विशेष रूप से उसी समय पड़ती है जिस समय रामायण में सबसे बड़ी घटना घटी थी, जो राम और रावण युद्ध था। राम रावण युद्ध जो था उसमें हम लोग देखते हैं कि राम ने जो अपने मनुष्य अवतार लिया उसको सिद्ध किया, और रावण ने जिस कारण से प्रभु की भक्ति करके और प्रभु को मनुष्य रूप में पुकारा था वो भी सिद्ध हुआ। इसके पीछे क्या रहस्य है अभी आपको हम बताते हैं। रहस्य क्या है इसमें कि जय विजय दो द्वारपाल जो वैकुंठ में है, एक बार उन्होंने शौनकादिक परम हंसों को सनत सनातन सनंदन को रोक दिया था भगवान विष्णु के पास जाने के लिए। छह ठेवड़ियां तो शौनकादिक परमहंसों ने पार कर दिया, सातवें ठेवड़ी पर जय विजय थे, द्वारपाल थे, वो आखिरी सीढ़ी थी। वहां पर जब शौनकादिक परमहंस रोके गए तो शौनकादिक परमहंस बहुत ही क्रोधित हुए, जबकि वे तो अद्वैत हैं। अद्वैत मतलब कि वो सदैव एक स्वरूप में भगवान में तल्लीन रहते हैं, तो क्रोध आया कैसे उनमें। यही तो विचित्र बात है कि जो निर्गुण है वही सगुण है, जो निराकार है वही साकार हो जाता है। ऐसे ही शौनकादिक परमहंस जो सदैव विदेही रूप से प्रभु में तल्लीन होते हैं, वो वैकुंठ में जब भगवान के सगुण साकार रूप को मिलने जाते हैं तो देखो द्वैत भाव में आ गए, और उसी द्वैत भाव में आकर के क्रोध तो द्वैत बुद्धि से ही उत्पन्न होगा ना, क्रोधित हुए और उन्होंने जय विजय को बहुत कड़ा दंड दिया। उसी समय विष्णु भी उतर आए नीचे, और भगवान विष्णु ने कहा शौनकादिक महापुरुषों से कि तुमने ठीक किया, ये सिर्फ हमारे द्वारपाल हैं, गेट कीपर हैं, इनको इस प्रकार से एक्टिंग एंड बिहेवियर नहीं करना चाहिए, इनका तो नेचर सुंदर शील भाव होना चाहिए, आपको पहचाना नहीं, आप लोग के साथ में इतने बुरे तरीके से व्यवहार किया तो आपने ठीक ही किया कि इनको कड़े दंड दिया। अब ये राक्षसी भाव का जब इस प्रकार से व्यवहार करे हैं तो जरूर ये राक्षसी ही जोनियों में जाएंगे। लेकिन भगवान विष्णु के इतने नम्र इतने सुंदर भाव को देख करके शौनकादिक परमहंसों ने विचार किया कि आखिर ये द्वारपाल हैं जरूर, लेकिन है तो ये भगवान विष्णु के सेवक, तो इनको ऐसे दुखदाई कष्टदाई राक्षस रूप में हमने किया है, परंतु इनका भगवान सा भगवान से जो बिछुड़ना होगा वो कितना दुखदायी होगा। इसलिए भगवान ही आकर के इनको तीन जन्मों तक अपने लीला में सम्मिलित करेंगे। और ये भगवान की लीला में बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा पार्ट एक्ट करेंगे। लीला मतलब कि भगवान ऐसे ऐसे घटना बनाते हैं, रचते हैं। हम लोग के जीवन में कर्म और कर्म का फल भाग के रूप में आता है। भगवान का जीवन में क्या कर्म और क्या भाग्य, वो तो कर्म बनाते हैं और भाग्य भी बनाते हैं कि इस समय ऐसा ऐसा हम करेंगे तो ऐसे ऐसे आचरणों से समस्त जगत के लोगों का कल्याण होगा और वो लोग इन इन कर्मों को देख करके और इन इन मेरे भोगों को देख करके शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे कि क्या सुंदर कर्म है और क्या नहीं सुंदर है, क्या सही है क्या गलत है, इन सब का ज्ञान होगा लोगों में। तो भगवान अपने आप को बांधते हैं कर्म में। वो तो कर्म भोग सबसे परे, वो तो पूर्णतम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, उनको कौन बांध सकता है। अरे वो तो दुनिया का मालिक है। हम जीवात्मा अपने तामसिक राजसिक सात्विक बुद्धि से उनको पहचानना चाहते हैं। जग पे खन तुम देखन हारे, बिधि हरि शंभु न चावन हारे, तेउ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। उनको कौन जान सकता है। तुमर ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। तुम्हारे कृपा से भक्त लोग तुम्हें जान सकते हैं, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हे हरि, हे नारायण, हे राम, हे कृष्ण, तुमको कौन जान सकते हैं। कोई नहीं। जब आपकी कृपा हो जाए तो जान ले प्राणी, और जैसे चंदन संपूर्ण शरीर में शीतलता शांति को प्रदान कर देता है कूलनेस को, इसी प्रकार आपको जान पाने में वो भक्तगण को ऐसे ही शीतलता और आनंद मिलता है। तो यहाँ पर जब शौनकादिक परमहंसों ने जय विजय को इस प्रकार से राक्षस योनि में जाने के लिए कह दिया, तो तीन जन्म तक वो राक्षस बन करके आएंगे और भगवान के साथ में उनका सामना होगा। और भगवान भी लीला जब करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे दुष्ट लोग, राक्षसी प्रभाव वाले लोग जो होते हैं उनको भी अपने लीला में रखते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि जब एक ओर राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम परम शांति और परम आनंद का जो भंडार हो, और उनके साथ में हनुमान जैसे, सुग्रीव जैसे, लक्ष्मण जैसे आदि भक्तगण हो, तो दूसरे ओर ये भी दिखाते हैं कि सुपर्णेखा जैसे और फिर रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे, इंद्रजीत जैसे, ऐसे राक्षसी स्वभाव वाले भी लोग कैसे होते हैं। तभी तो दुनिया वाले जान पाएंगे कि राक्षसी स्वभाव क्या होता है और भगवत भक्ति या मनुष्य स्वभाव क्या होना चाहिए और होता है, सत्य क्या है असत्य क्या है, गलत क्या है सही क्या है। जब भगवान लीला में गलत नहीं रखेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। और फिर दीपक का जो प्रकाश है, जो लाइट है, उसका तो तभी आप सुंदरता देख सकते हो जब अंधेरा हो। अंधेरा नहीं है और आपने बहुत सारे क्रिसमस लाइट्स लगा दी तो उसको कौन देखने जाता है, कोई भी नहीं। लेकिन हाँ, जब अंधेरा होता है और सुंदर सुंदर जब दीपक जगमगाते हैं तो कितने लोग उनको देखने जाते हैं और हर्षित होते हैं, खुशी होते हैं। सूरज तो दिन में निकलती है, जरूर हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके देखने के लिए कौन जाता है। बल्कि देखना चाहे भी तो देख नहीं सकते। लेकिन अंधेरी रात में जब पूर्णिमा की चंद्रमा निकलती है तो कितना मन भाई लगता है, कितना सुंदर लगता है, लाखों लोग उन्हें देखते हैं और प्रशंसा करते हैं। इसी प्रकार से हम राम या राम मर्यादा या मनुष्य का जो सुंदर स्वभाव है और जो मनुष्य का द्वारा बताई गई, दर्शाई गई धर्म है, आचरण है, उसको तो तभी हम देख सकेंगे, जान सकेंगे, उस सौंदर्य का, उस माधुर्य का तभी रस पान कर सकेंगे जब हम उसकी विरोध को देखेंगे कि दुष्ट भाव और जो राक्षसी प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति प्रशंसा नहीं निंदा के योग्य है, ऐसे जब लोगों को हम देखेंगे, ऐसे निंदक ऐसे दुष्ट प्राणियों को जब हम देखेंगे, ऐसे दुष्ट कर्मों को जब हम देखेंगे सुनेंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि कितना सौंदर्य, कितना मधुर, कितना सुशील वो भगवत प्रेमी जन होते हैं और भगवत स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं। इस कारणवश राम को अपने लीला में जरूर राक्षस और राक्षसी प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग चाहिए। जैसे कृष्ण में, कृष्ण लीला में भी आप देखते हो कंस प्रवृत्ति, शिशुपाल प्रवृत्ति के लोग, केकई प्रवृत्ति के लोग आप देखते हो, राम राज में मंत्रा को देखते हो। ये जब दुष्ट प्रवृत्ति वाले को देखते हो तो आप लोग जानते हो कि कोई अपने बेटा या बेटी का नाम कभी केकई नहीं रखता या मंत्रा नहीं रखता या फिर रावण नहीं रखते। जब लोग, बच्चे लोग बहुत शैतानी करने लगते हैं तो लोग क्या कहते हैं माता पिता कि तुम तो बिल्कुल रावण हो। हाँ, जबकि वो लोग बिल्कुल खेल खेल में कहते हैं। सचमुच में कौन अपने बेटे को रावण बनाना चाहेगा। लेकिन रावण कहने का मतलब बड़ा राक्षस, बड़ा राक्षसी प्रभाव। और जब बेटा बड़ा सुशील, बड़ा सुंदर भाव का होता है और जब अच्छे अच्छे काम करने लगता है, माता पिता का बात सुनने लगता है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, तुम तो मेरे राम हो। तो देखो राम भाव कितना सुंदर भाव मन में आता है, रावण भाव कितना गलत भाव आता है, दुष्ट भाव आता है। तो इसी कारण से भगवान जब लीला करते हैं तो उसमें दोनों भाव को रखते हैं और ये ज्ञान देते हैं कि मनुष्य सदा सुंदर भाव, सुंदर चरित्र, भगवत भाव को अपनाए, जो राम में है, जो लक्ष्मण में है, जो आप लोग सुंदर सुंदर भक्तगण काक भुषुंडी इत्यादि के प्रकरण से सुनते हो, पाते हो। जब जय विजय राक्षस बनकर आते हैं तो उसमें उनका एक पहला अवतार तो होता है हिरण्यकश्यप और हिरण्यकेशपु, जो हमने होली के समय पर इसका उदाहरण देकर के आप लोग को बताया था। लेकिन जब हमारे यहाँ पर रामायण की चरित्र लीला होती है और रावण युद्ध की बात आती है तो उस समय वही जय विजय जो राक्षस बनते हैं वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आते हैं। तो रावण इतना घोर, इतना बड़ा राक्षस हुआ है, इतनी दुष्ट प्रवृत्ति वाला हुआ है कि उन्होंने जब अपने दुष्टता को इतना फैला दिया, बढ़ा दिया, जहां साधु संतों के लिए कोई स्थान नहीं, भक्तों के लिए कोई स्थान नहीं, सुंदर मनुष्य जो सुंदर चरित्र वाले हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं, सबको राक्षसीपन में डालने लगा, तो उनके नाश के लिए स्वयं भगवान राम को आना पड़ा। लेकिन रावण क्योंकि जय विजय जो हैं वो तो भगवान के द्वारपाल ही थे और श्राप लगने पर, गलत काम करने पर उनको राक्षसी जोनी में आना पड़ा। तो जब वो राक्षसी जोनी में आए तो रावण बहुत बड़ा तपस्वी थे, शंकर भगवान की आराधना करते थे और अपने भक्ति में उन्होंने ये बात माना था, जाना था कि मेरे जैसे कोई भी इस समय सृष्टि पर, दुनिया में ताकतवर नहीं है। शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे और उनको कैलाश पर्वत सहित कैलाश पति को उठा लिया था मजाक में ही, इतने बल था उसमें, वायु की गति को रोक दे, चंद्रमा की गति को रोक दे, जब जो चाहे सो कर ले, अपने तपश्चर्या और अपने ये साधना योग बल से उन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन अहंकार के कारण वो उन्होंने अपने सारे समस्त शक्तियों को अब्यूज करने लगा था। अहंकार के कारण वो भगवान और भगवत जनों को नहीं पहचानता, नहीं जानता था, अपने आप को ही भगवान समझने लगा था। इस कारणवश रावण जैसे महान राक्षस, महान योद्धा के तो एक गबल शक्ति थी और वो थे प्रभु राम। यानी इतना बड़े राक्षस, इतनी बड़ी बल शक्ति के साथ सामना करने वाला विश्व में और कोई नहीं था सेवा एक राम के सिवा। तो प्रभु राम जब आते हैं तो उन्हें मनुष्य रूप धारण करके आना तो था ही, बहुत सारे कारण थे उसमें और सबसे प्रमुख कारण तो कृपा ही है। परंतु रावण ने अपने तपश्चर्या में ये जरूर मांगा था कि भगवान मेरे सामना करने के लिए तो सिर्फ आप ही आओगे और आप मनुष्य रूप में आना, क्योंकि पूर्व जन्म में जब मैं हिरण्यकश्यप बना था तब तो आप नरसिंह अवतार लेकर आए थे, लेकिन इस जन्म में आप मनुष्य रूप में आना, आपका मानव अवतार भी मैं देख लूं और उसमें मैं जरूर राक्षस बन करके ही सामना करूंगा और मेरा गलत जो भाव रहेगा वो लोगों के लिए एक शिक्षा बनेगी कि कभी इस प्रकार से गलत प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति वाला ना बने, लेकिन आपका मैं मनुष्य रूप भी देख लूं। तो इस प्रकार से राम रावण युद्ध हुआ, एक मनुष्य के भांति हुआ और उसमें 9 दिन तक ये युद्ध चला था। और 10वें दिन पर जब आ पहुंचा युद्ध, तो उस दिन रावण का वध हुआ। और रावण का वध हुआ जब, तो उसी को विजयदशमी कहते हैं, दशहरा कहते हैं। यानी उस दिन राम के जो महिमा है, जो राम का प्रेम है, जो भक्ति है, जो सुंदर भाव है, उसको व्यक्ति जन, उसको भक्तगण याद कर करके, ऋषि मुनि याद कर करके और कीर्तन भजन करते हुए, प्रभु गुणगान करते हुए उस भाव को